प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 19 जुलाई 2018 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं राजपाल, जिनका गांव है भुजा गोटिया, जिला बरेली उत्तर प्रदेश से, और आशुतोष कुमार, आप हैं धारबंगा बिहार से। तो राजपाल और आशुतोष, आप दोनों नौजवान साथियों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय में मैं आपसे थोड़े से अलग ही मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं, अलग तरीके से आप क्यों कह लीजिए, और इसका संबंध आपकी आप कह लीजिए कि इकोनॉमिक्स से है और इसका शीर्षक है राजकोषीय विवेक। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आइए पहले कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। कल हम लोगों ने नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में बात की थी, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में, और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है और उस पर अब बहस होगी, होनी शुरू हो गई है और अखबारों में भी आने लगा है। और अगर कल आपने डीडी न्यूज देखी हो, और मैं कहना चाहूंगा फ्रेंड्स कि अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो प्लीज आप ऐसा करें, केवल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सच पूछे तो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की दृष्टि से, और यहां तक कि एक पढ़े लिखे और सुशिक्षित व्यक्ति अपने आप को सिद्ध करने की दृष्टि से भी, राइट। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, खासकर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपने कल का डीडी न्यूज देखा हो तो आप देखिए कि उसमें अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कई चीजें बताई गई थी। सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव कब आया, किसके खिलाफ आया, सबसे ज्यादा प्रस्ताव किसके विरुद्ध आए, किस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव एडमिट किया जाता है, जिसमें मेंशन किया गया कि 50 सांसदों के दस्तक होने चाहिए। फिर बकायदे उन्होंने एक एक एक्सपर्ट को बुलाया और एक्सपर्ट को बुलाने के बाद अविश्वास प्रस्ताव की संवैधानिकता पर बात की, और यहां तक कि अभी यह प्रस्ताव जो लाया गया है कितना उचित है और इसके क्या परिणाम होंगे, इस पर भी बातचीत हुई। अब आप देखिए कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में मान लीजिए कि अविश्वास प्रस्ताव पर प्री में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा मान लीजिए, या मेंस में ही पूछा जाएगा, तो वो किस तरीके का बनेगा। देखिए, मैं आपको कई बार ये बात कभी कभी इशारे से और कभी डायरेक्ट भी कहता हूं कि सिविल सर्विस में इंपॉर्टेंट यह नहीं है कि आपका सिलेबस कितना है, सिविल सर्विस में इंपॉर्टेंट यह है कि जो भी आपका सिलेबस है उसमें से क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का तरीका इस्तेमाल है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक बहुत ही सरल तरीके से पूछा जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव क्या है, अविश्वास प्रस्ताव के पारित हो जाने के परिणाम क्या होते हैं, यह भी क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि यदि अविश्वास प्रस्ताव जैसे इंस्ट्रूमेंट, यंत्रों का इस्तेमाल आप कह लीजिए, यंत्रों का इस्तेमाल यदि सरकार को परेशान करने के लिए किया जाए तो इससे तो वस्तुतः लोकतंत्र की आत्मा का ही पतन हो जाएगा, मान लीजिए। यह भी अविश्वास प्रस्ताव पर है, यह सिविल सर्विस का पैटर्न है। तो इसकी तैयारी आप कैसे करेंगे? देखिए, किताब में तो आप पढ़ लेते हैं विश्वास प्रस्ताव क्या है, उसके सारे छोटे छोटी बातों को आप जान लेते हैं, लेकिन इस तरह के प्रश्नों के उत्तर आप तब देख पाते हैं जब आप उस समय होने वाली बहस, छपने वाले आर्टिकल्स, एडिटोरियल कमेंट्स, इन सबको पढ़ते हैं, और केवल पढ़ते ही नहीं है बल्कि समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तब फिर आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर बड़ी आसानी से दे जाते हैं। इसलिए मित्रों, मैंने डीडी न्यूज के बारे में आज फिर से आपसे बात की है, और अब आप देख रहे हैं संसद की कार्यवाही शुरू हो गई है, तो मैं चाहूंगा कि आप संसद की कार्यवाही पर भी थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा वक्त निकालें, देखें कि संसद की कार्यवाही कैसे होती है। अखबारों में भी इस तरह की चीजें छपती रहती हैं, तो थोड़ा सा उसको भी देखें, क्योंकि सिविल सर्विस के प्री में अब खासकर जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको लेकर के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। मित्रों, जो एक और खबर थी वो आपने देखा कि खासकर कृषि को लेकर, मतलब वो खबर क्या थी, इसके बाद उस पर थोड़ी सी रिपोर्टिंग जैसी भी थी कि सरकार किसानों की आमदनी दुगुना करने के लिए क्या क्या करने जा रही है, तो उसमें कुछ योजनाओं के नाम बताए गए और फिर एक दो उदाहरण दिए गए। मित्रों, मैं यहां इस बारे में तो सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है, एग्रीकल्चर एज ए होल, कृषि, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप सिलेबस उठा करके देखेंगे तो उसमें तो मेंशन किया ही गया है, लेकिन अनसॉल्व्ड पेपर में आप पाएंगे कि शायद ही कोई साल ऐसा हो जब आपके कृषि से तीन प्रश्न न पूछे गए हों, तीन चलिए उसको थोड़ा मैं कर, दो प्रश्न न पूछे गए हों, दो प्रश्न तो पूछे ही पूछे जाते हैं जो डायरेक्ट होते हैं, तीसरा प्रश्न कभी कभी वो इनडायरेक्ट तरीके से हो जाता है, तो हम दो ही ले लेते हैं, और अगर 20 में दो प्रश्न कृषि से आ रहे हैं तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। तो एग्रीकल्चर पर हर एस्पेक्ट से आपकी बहुत अच्छी तैयारी होनी चाहिए। राइट फ्रेंड्स, एक खबर आपने और सुनी कि असम में किस तरीके से जो वहां के लोक सेवा आयोग है वहां के मामलों में, भर्ती के मामलों में करप्शन भ्रष्टाचार को लेकर के कुछ ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया गया है जो लोक सेवा आयोग द्वारा ही चयनित किए गए ऑफिसर थे। राइट, ये एक छोटी सी खबर है, क्योंकि इस खबर से कोई सीधे सीधे प्रश्न नहीं बनता है, इसका आप उपयोग कैसे करेंगे? उपयोग इस तरीके से करेंगे कि आप जब आप अनसॉल्व पेपर उठा करके देखिए पिछले, तो उसमें हमेशा सिविल सर्विस पर कोई ना कोई क्वेश्चन होता है, जैसे कृषि पर दो होते हैं तो सिविल सर्विस पर एक क्वेश्चन होगा ही होगा, सिविल सर्वेंट पर होगा, सिविल सर्विसेज पर होगा। तो अब जब सिविल सर्विस पर कोई क्वेश्चन आ रहा है और मामला भ्रष्टाचार से संबंधित, या आपके फोर्थ पेपर में चले जाए कि नैतिकता से संबंधित है, ईमानदारी से संबंधित है, तो आपके एग्जाम्पल के लिए यह बहुत अच्छा काम करेगा। और देखिए, इस भ्रष्टाचार की सबसे यूं कह लीजिए कि गंभीरता क्या है, वो ये है कि अगर गंगा जो गंगोत्री से निकलती है अगर वहीं से प्रदूषित हो जाए तो आप क्या करेंगे? फिर तो मामला ही गड़बड़ हो गया। चलिए कानपुर में आकर के वो प्रदूषित हो रही है जहां बहुत से कारखाने हैं, तो यहां तो आप सफाई कर लेंगे, कारखानों को हटा देंगे, लेकिन निकलने वाली धारा ही अगर प्रदूषित है तो अब जब पीएससी में आप इन सब चीजों को कर रहे हैं तो जो आ रहा है कैंडिडेट ऑलरेडी भ्रष्ट तरीके का इस्तेमाल करके आ रहा है, और ये आने के बाद 30-35 साल तक तंत्र में रहेगा, तो आपको नहीं लगता कि स्रोत पर ही आपने गड़बड़ी कर दी? तो इस दृष्टि से ये उदाहरण जो है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट उदाहरण हो जाता है। और सिविल सर्विस के लिए आप याद रखिए कि जब भी ये कहा जाए कि आप एग्जाम्पल देकर के समझाइए, या नहीं भी कहा गया है लेकिन आपको एग्जाम्पल देना है, तो कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा लेटेस्ट एग्जाम्पल दे सकें। तो इस तरह से ये आपके एक लेटेस्ट एग्जाम्पल के रूप में ये काम आ सकता है। तो मित्रों, ये छोटी छोटी खबरें थी। अब आइए मैं बात करता हूं थोड़ा सा राजकोषीय विवेक पर। मैंने ये विषय क्यों चुना, क्योंकि इकोनॉमिक्स से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या अर्थव्यवस्था इकोनॉमी से, तो कह लीजिए वो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। अब जो राजकोषीय विवेक है, इसे आप कैसे समझेंगे? आज मैं आपको एक आर्टिकल प्रोवाइड कर रहा हूं, फिर से वो बिजनेस स्टैंडर्ड का है, बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, और उसके बिल्कुल आप लास्ट में जाएंगे तो उसमें पांच पॉइंट्स दिए हुए हैं, पांच पॉइंट्स उन्होंने सजेशन के तौर पर दिए हैं। उसी में से दो पॉइंट्स हैं जो मैं आपको यहां पढ़कर सुनाना चाहूंगा, और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि जो क्लिपिंग्स होती हैं न्यूज़पेपर्स की, एडिटोरियल आर्टिकल्स हों या एडिटोरियल कमेंट्स हों, उनको आप अपने लिए वैल्यूएबल कैसे बना सकते हैं, अधिक मूल्यवान कैसे बना सकते हैं। राइट, तो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं, हालांकि अगर क्लिपिंग्स तो मैं डालूंगा ही, अगर मैं नहीं भी सुनाता तो आप उसे वहां से पढ़ सकते थे, लेकिन उससे बात बनेगी नहीं। मुझे मालूम है कि स्टूडेंट्स कहां थोड़ा सा आलस्य कर जाते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा, और इसी में राजकोषीय विवेक शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको दो वाक्य पढ़कर सुनाऊंगा, दो सजेशन, और मैं चाहूंगा कि आप इन दोनों पर विचार करें, अपनी दृष्टि से विचार करें। केंद्र और राज्य सरकारों को, याद रखिए दोनों की बात कर रहा है, केंद्र और राज्य सरकारों को राजकोषीय विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। हाल के दिनों में फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी और राज्यों की कर्ज माफी जैसे कदम उठाए गए, इससे लगता है कि राजकोषीय घाटा लक्ष्य से ऊंचा होगा, सरकार को अपनी उधारी बढ़ानी होगी और इससे ब्याज दर बढ़ेगी। ये एक स्टेटमेंट है, यहां राजकोषीय विवेक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, है ना? राजकोष आप समझते हैं सरकार का खजाना, तो राजकोषीय विवेक का मतलब हुआ कि जो सरकार का खजाना है उस खजाने का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाना चाहिए, विवेक के साथ किया जाना चाहिए। इसमें फिर उन्होंने दो उदाहरण दिए कि आपने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा दिए, तो अब आपको किस खजाने से पैसा निकालना पड़ेगा उसके लिए, तो ये कितना सही है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, आपको सोचना समझना चाहिए। इसी तरह से बहुत से जो राज्य हैं, राज्यों के कर्ज माफी कर, वो कर्ज ही पूरा का पूरा माफ कर देते, किसानों के कर्ज माफ कर दिए, जैसे कर्नाटक सरकार ने, जैसे ही अभी सरकार बनी उन्होंने किसानों के कर्ज माफ कर दिए, तो अब किसानों के तो कर्ज माफ कर दिए, लेकिन बैंकों को तो पैसा देना है ना, ये नहीं कि बैंकों का पैसा नहीं लौटाना है, कोई दादागिरी नहीं है। तो जो सरकार है, राज्य सरकार, वो बैंकों को पैसा दे देगी, मतलब किसानों का पैसा ये दे देगी, तो वो पैसा कहां से देगी, तो राजकोष से देगी। अब उसका राजकोष खाली हो गया, उसने इस कुछ कर्ज माफी के लिए दे दिया, कुछ उसने न्यूनतम समर्थन मूल्य की भरपाई करने के लिए दे दिया, कोष खाली हो गया। अब कोष तो खाली हो गया, लेकिन खाली कोष से काम चल जाएगा सरकार का, इतने सारे एम्प्लॉयज हैं, उनको सैलरी देनी है, इतने विकास के काम हो रहे हैं, पता नहीं कितनी चीजें चल रही है, तब उसको पैसा चाहिए। अब वो पैसा लाएगा कहां से? तो अब आप देखिए कि कह रहे हैं कि अगर आपके लक्ष्य से ऊंचा हो गया, एक बजट के समय में बकायदे ये कहा जाता है, एक लक्ष्य रखा जाता है कि हमारा राजकोषीय घाटा 2.5% होगा, 3% होगा, लेकिन अगर उससे ऊंचा हो गया तो अब आप क्या करेंगे? अब इसकी भरपाई करने के लिए या तो सरकार दूसरों से उधार लेगी, चाहे वो वर्ल्ड बैंक से ले, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से ले, या फिर पब्लिक से ले, कहीं से भी ले, वो उधार लेगी। और अगर वो उधार लेती है तो उधार ऐसे तो नहीं मिलेगा, उसके लिए उसको ब्याज देना होगा, और इससे फिर जो मार्केट में जो ब्याज की दरें हैं वो बढ़ेंगी। तो मित्रों, इसका इम्पैक्ट इस तरीके से होगा। तो मैंने थोड़ी से आपको राजकोषीय विवेक के बारे में बताया है। मैं अब चाहूंगा कि आप सब इस वाक्य को अपनी तरफ से एनालाइज करें, या कह लीजिए कि यही सिविल सर्विस में एक प्रश्न पूछा गया है और आपसे कहा गया है कि इसे स्पष्ट कीजिए या इसे समझाइए। तो अब आप सब इसे अपने ढंग से सरल रूप में, सरल भाषा के जरिए, उदाहरण दे दे करके समझने की कोशिश कीजिए और दूसरों को समझाने की कोशिश कीजिए। अगर आपका ग्रुप बना हुआ है तो आपस में आप इस टॉपिक पर बकायदे डिस्कशन कर सकते हैं। इसके बाद जो अंतिम वाक्य है तो मैं वह पढ़ देता हूं, और मैं चाहूंगा कि यदि संभव हो सके आप लोगों के लिए तो आप इसको भी इसी तरह से उठा लें और इसका भी इस्तेमाल इसी तरीके से करें। लास्ट पॉइंट है, ऐसे नीतिगत कदम न उठाए जाएं जिनका बचाव करना मुश्किल हो। मसलन, IDBI बैंकों की खरीदी के लिए LIC की मदद लेना। ऐसा इसलिए क्योंकि वृहद आर्थिक स्थिरता के दबाव में होने पर सरकारी की नीतिगत विश्वसनीयता भी दांव पर होती है। सरकार की होना चाहिए, सरकार की नीतिगत विश्वसनीयता भी दांव पर होती है। तो इसके लिए हम लोगों ने अभी दो दिन पहले बात की थी, जब IDBI बैंक को LIC ने अधिग्रहित किया था, तब आपको ध्यान होगा मैंने इस पर चर्चा की थी। ये उसी को आधार बना करके लिखा गया है, इसको भी अपने ढंग से आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, समझने और समझाने की कोशिश कीजिए। इसमें उन्होंने कहा है कि सरकार की नीतिगत विश्वसनीयता दांव पर होगी। तो भैया, इसमें कैसे नीतिगत विश्वसनीयता दांव पर हो गई? बकायदे LIC उसको खरीद रही है, 51% शेयर ले रही है, सब कुछ कागज पर हो रहा है, लिखा पढ़ी हो रही है, तो सरकार की नीतिगत विश्वसनीयता कैसे दांव पर हो गई? केवल इसी प्रश्न पर आप विचार कीजिए, बाकी ऊपर वाला का तो हिस्सा जो है ना आप पाएंगे कि वो बहुत सरल है, आप समझ जाएंगे। तो दोस्तों, ये मैंने कुछ बातें आपसे मुख्य विषय के तहत की हैं। अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स पर, जो मैं सामान्य तौर पर आपको प्रोवाइड करता ही हूं, आप अपने ढंग से देख लेंगे। सभी ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, हंसराज प्रजापति, नूरी परवीन, पीयूष पटेल पंचेगढ़ा उत्तर प्रदेश से, नवनीत दिल्ली से, विवेक धवन और प्रभाकर माचवे जमुई बिहार से। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।